एप्शिता ने उदय की बात सुनी और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई आप प्लीज़ अभिमन्यु को लेकर ज़्यादा कुछ मत सोचिए। वैसे भी हम उदयपुर छोड़कर इसीलिए यहाँ पर आए थे ताकि हम इन सारी लड़ाई झगड़ों से दूर रह सकें। अगर यहाँ रहकर भी हमारे सामने बार बार इस तरह के लड़ाई झगड़े होंगे तो हमें नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर आना का फ़ैसला सही साबित होगा। इसलिए प्लीज़ आप खुद को शांत रखिए और जितना ज़्यादा हो सके इस लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। उदय ने नंदिनी की तरफ देखा। तभी नंदिनी इप्सिता के पास आकर बैठ गई। इप्सिता उदय से बात करने के बाद बिल्कुल चुप हो गई थी। वो भी अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी। नंदिनी ने उसकी फ़िक्र करते हुए पूछा, इप्सिता तुम ठीक हो ना? इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, हम ठीक हैं, बस हमारे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। नंदिनी आज तुम अकेली स्टूडियो चली जाओ, अगर अथर्व सर मेरे बारे में पूछें तो तुम बता देना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से ये बात सुनी, इप्सिता को देखकर समझ गई कि वो अभिमन्यु की वजह से ही परेशान हो रही है। नंदिनी ने कहा, इप्सिता अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी इप्सिता के बगल में बैठ गई। उसने नंदिनी की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हम ठीक हैं, तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उदय भाई आप ही अपने ऑफिस जाइए, हम आज घर पर ही रहेंगे, हमें थोड़ी देर अकेले रहना है। उदय ने उसकी बात सुनकर इप्सिता को समझाते हुए कहा, इप्सिता मैं तुम्हारे हर फैसले में हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ और आगे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, इसलिए तुम किसी भी बात को लेकर टेंशन मत लेना। वैसे भी अब हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें अब राजवंशी राज परिवार के बारे में सोचना है और ना ही सूर्यवंशी राज परिवार के बारे में। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियाँ चाहते हैं, राइट? इप्सिता ने उदय का हाथ पकड़ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हमें बस एक दूसरे का ध्यान रखना है और बाकी जिन लोगों को हम पीछे छोड़ाए हैं उनसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उदय ने भी उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ और अभिमन्यु से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही फ्यूचर में तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता होगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उदय ने ये बात कही, इप्सिता उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। उसने अपने मन में कहा, क्या सच में हमारा अभिमन्यु से अब कोई भी रिश्ता नहीं होगा? इप्सिता अपने मन में ये बात सोच रही थी तभी नंदिनी खड़ी की तरफ देखने लगी। उन लोगों को काफ़ी देर हो गई थी, वे दोनों ही इप्सिता के लिए थोड़ा परेशान भी हो रहे थे। तभी नंदिनी की माँ उन दोनों के पास आई और बोली, उदय नंदिनी जाओ, तुम दोनों जाओ, मैं इप्सिता के साथ हूँ और मैं उसका ध्यान रखूँगी। नंदिनी ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी, उसने इप्सिता की तरफ थोड़ा परेशान होते हुए देखा और कहा, इप्सिता तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। इप्सिता नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नंदिनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी तुम लोगों को काफ़ी देर हो गई है, अब स्टूडियो के लिए निकलना चाहिए, तुम्हारी जूनियर तुम्हारा वेट कर रही होगी। नंदिनी इप्सिता के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरा तो तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। इप्सिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार हम कोई छोटी बच्ची नहीं है और हम अपना ध्यान रख सकते हैं, आप दोनों जाइए। इतना बोलकर इप्सिता ने उदय और नंदिनी को घर से बाहर भेज दिया। वे दोनों सीधे घर से बाहर निकले। रास्ते में उदय अभिमन्यु के बारे में ही सोच रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अभिमन्यु फिर से इस तरह हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। नंदिनी की ये बात सुनकर उदय ने कहा, नहीं वो हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते, हम उन्हें इप्सिता की ज़िंदगी में वापस नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बहन को फिर से उस तरह की तकलीफ़ में नहीं देख सकते। उदय की बात सुनकर नंदिनी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। तभी उदय ने कहा, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि अभिमन्यु के जाने के बाद इप्सिता ने खुद को कैसे संभाला है, हम दोनों ने ही उसकी हालत देखी है, उसके बाद भी आप ये बात कैसे बोल सकती हैं? हम चाहकर भी अब अभिमन्यु को इप्सिता की ज़िंदगी में वापस नहीं आने दे सकते। अभिमन्यु को हम जैसा समझते थे वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमारी बहन का दिल दुखाया। क्या समझते हैं वे कि वे इस तरह से हमारी बहन को तकलीफ़ देने के बाद फिर से उसकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और हम ऐसा होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उदय इतना बोलते हुए काफ़ी गुस्से में था। तभी नंदिनी ने उदय का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे समझाते हुए कहा, मैं भी अब ऐसा ही चाहती हूँ कि अभिमन्यु इप्सिता की ज़िंदगी में वापस ना आए, जितना मैं उन्हें अच्छा समझती थी वैसे तो वे शायद बिल्कुल भी नहीं हैं। नंदिनी की बात सुनकर उदय ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी नंदिनी ने अपने मन में कहा, लेकिन अभी तक मैं उन्हें जितना जान पाई हूँ उससे तो मैं इतना समझ ही चुकी हूँ कि वे वैसे बिल्कुल नहीं हैं, जितना गलत हम सब उन्हें समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात अभी इप्सिता और उदय से नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैं इन दोनों से ये बात कहूँगी तो इन्हें लगने लगेगा कि हम अभिमन्यु का साइड ले रहे हैं, इसलिए हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। उदय बहुत गुस्से में है क्योंकि वो इशू को लेकर प्रोटेक्टिव है और हम अभी उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। नंदिनी इतना बोलकर चुप हो गई और वो अपनी कार से सीधे स्टूडियो की तरफ निकल गई और उदय अपने ऑफिस के लिए। इधर इप्सिता अपने कमरे में अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने अभिमन्यु को उस समय यहाँ से जाने के लिए कहा था। वो जानती थी कि अगर वो अभिमन्यु से ये बात ना कहती कि वो उससे मिलने आएगी तो शायद अभिमन्यु यहाँ से ना जाता। इप्सिता ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। हमने कह तो दिया अभिमन्यु से कि हम उनसे मिलेंगे, लेकिन क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? क्या ऐसा करना सही होगा? इतना सोचकर वो काफी परेशान हो रही थी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो अभिमन्यु के चेहरे को याद कर रही थी, जिस तरह से अभी अभिमन्यु उससे बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। उसे देखकर इप्सिता ने अपने मन में कहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि अभिमन्यु हमसे इतना बात करने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे? क्या वो हमें सफाई देकर हमसे माफी मांगना चाहते हैं? इप्सिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसने तुरंत उठते हुए कहा, चाहे अभिमन्यु कितनी भी सफाई पेश करें, वो हमसे चाहे कितनी ही माफी क्यों ना मांगे, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। इतना सोचकर इप्सिता अपने फोन की तरफ देखने लगी और उसने कहा, लेकिन उन्हें माफ करना या ना करना वो तो बात की बात है, हमें उनसे मिलना तो होगा ही। अब हमने उनसे जब वादा कर दिया है तो उनसे मिलने तो जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और अभिमन्यु के नंबर को अनब्लॉक करते हुए सोचा, कॉल करें या फिर मैसेज। इप्सिता यही सोच रही थी तभी उसने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन अभिमन्यु के नंबर पर भेजी और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, शाम को 4 बजे इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे। इप्सिता ने जैसे ही मैसेज भेजा, तुरंत 2 मिनट बाद अभिमन्यु ने इप्सिता के नंबर पर कॉल कर दिया। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु का नंबर देखा, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभिमन्यु, अब हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? इतना बोलकर उसने कॉल पिकअप करते हुए कहा, क्या बात है, हमने आपको मैसेज किया, उसके बाद भी आप हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, वो हमने इसलिए कॉल किया क्योंकि हमें आपसे कुछ कन्फर्म करना था। इप्सिता ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या कन्फर्म करना है आपको? अभिमन्यु ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, असल में हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलने अकेले आए, नंदिनी या उदय को लेकर नहीं।
इप्सिता ने उसकी ये बात सुनकर अपने मन में कहा, हाँ, वैसे भी हम अकेले ही आएंगी क्योंकि हम नंदिनी और भाई को परेशान नहीं करना चाहते। वो अपने मन में ये बात बोल ही रही थी तभी उसने कहा, ठीक है, हम अकेले ही आएंगी। अभिमन्यु, हमारी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम 4 बजे वहां पहुंचे और आप वहां पर हमें नहीं मिले तो हम 5 मिनट से ज्यादा आपका इंतजार नहीं करेंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनकर बड़े प्यार से कहा, आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम पहले से ही वहां पर होंगे जब आप वहां पहुंचेंगी, क्योंकि हम आपसे बात करने के लिए कितने बेचैन हैं आप नहीं समझ सकती। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी लेकिन उसने बिना कुछ जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इप्सिता अभिमन्यु की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, वो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। इप्सिता का सिर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। तभी नंदिनी की माँ इप्सिता के कमरे में आई। उन्होंने दरवाजा नॉक किया और देखा कि इप्सिता अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। जैसे ही इप्सिता ने दरवाजे की तरफ देखा, उसने कहा, अरे आंटी, आप आइए अंदर। वो अंदर आई और उन्होंने इप्सिता के बगल में बैठते हुए कहा, इप्सिता बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर इस तरह से ये सारी बातें सोचकर परेशान होगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इप्सिता ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे आपको मुझसे कुछ काम था क्या? नंदिनी की माँ ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई काम तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये बाम देने आई थी, इसे लगा लो ताकि तुम्हारा सिर कम दर्द करे और हो सके तो थोड़ी देर सो जाओ। इप्सिता ने उनकी बात सुनकर और उनके हाथ से बाम लेकर अपने सिर पर लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। इप्सिता ने उनके सामने ही बिस्तर पर जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, नंदिनी की माँ उसके कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही इप्सिता की आंख खुली और उसने कहा, हमारी वजह से सब लोग परेशान हो गए हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की एक गलती की वजह से हो रहा है, उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आज हम उनसे मिलकर इस बात को भी साफ कर देंगे, हम नहीं चाहते कि हमारी छोटी सी फैमिली जो एक साथ इतनी खुश है वो इस तरह से अपसेट हो जाए। इप्सिता ये सारी बातें सोच ही रही थी, उसी समय अभिमन्यु ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, कम से कम हमारी बात तो सुन लेती, उन्होंने हमारी बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इतना बोलकर वो इप्सिता को दोबारा कॉल करने जा रहा था तभी अभिमन्यु का फोन बजा और उसने जैसे ही अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, उसने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हाँ समर्थ, बोलो क्या बात है? समर्थ ने अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर कहा, क्या हुआ, बड़े टेंस लग रहे हो, अभी तक इप्सिता भाभी से तुम्हारी बात नहीं हुई क्या? अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, इसीलिए वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। कृपया अगले भाग का इंतजार करें।